नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अवसरेषु नित्यं भागवत सेवया उत्तम श्लोके भक्ति भवति नष्टिके। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। श्रीमद्भागवतम पांचवा स्कंद आठवां अध्याय छह नंबर श्लोक। त्वं हि ब्रह्मविदां
श्रेष्ठा
संस्कारान् कर्तुम् अर्हसि बालयोरलयोर्निर्णा जन्मना ब्रह्मणो गुरु। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि बालयोरलयोर्निर्णा जन्मना ब्रह्मणो गुरु। त्वं हि ब्रह्मविदां श्रेष्ठा संस्कारान् कर्तुमर्हसि
Thank you.
प्रार्थना की कि वे उनके दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करके
जीवन लक्ष्य की ओर अग्रसर करने के मार्गदर्शन करें।
श्री प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानार्जनकलापया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात्य देशकारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण बोलने से पहले मैं वरिष्ठ भक्त का एक बनमाण प्रभु कमल प्रभु का आशीर्वाद का याचना करता हूँ ताकि मैं भागवतम के ऊपर कुछ बोल सकता हूँ जो सुना हूँ आज तक। जैसे कि योग्यता तो नहीं होता है मगर जैसे शुद्ध गोस्वामी को सुखदेव गोस्वामी महाराज और व्यासदेव का कृपा था इसलिए वो वापस भागवतम को सुनाए। ऐसा वरिष्ठ भक्तों का कृपा रहेगा तो भगवान का गुणगान कर सकते हैं, नहीं तो भगवान का गुणगान करने के लिए भी हमारा योग्यता चाहिए। तो हम आशीर्वाद में प्रार्थना करते हुए भागवतम के ऊपर चर्चा करेंगे। जो आज का श्लोक है उसमें नंद महाराज गर्ग मुनि को बताते हैं कि हे प्रभु आप ब्राह्मण में श्रेष्ठ है, विशेषतया क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र में भलीभांति अवगत है, अतएव आप सहज ही हर व्यक्ति के आध्यात्मिक गुरु है। ऐसा होता है कि क्योंकि आप कृपा करके मेरे घर पर आए हैं अतएव आप मेरे दोनों पुत्रों का संस्कार संपन्न करें। जैसे कि हर एक गृहस्थ होते हैं कि अपने बेटे को प्रेम करते हैं और उनको सब कुछ देना चाहते हैं तो उनको संस्कार भी देना चाहते हैं। और नंद महाराज श्री श्री राधा गिरिधारी भगवान की जय, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय। नंद महाराज इसलिए भगवान जब अपने ऐश्वर्य को दिखाते हैं जैसे कि प्राणवध का वध किए पोतना का वध किए ऐश्वर्य दिखाने के बाद भी उसको छुपाते हैं ताकि वो जो उनका वात्सल्य रस है वो ढक ना जाए। अगर वो पता चल गया वो भगवान है तो माता यशोदा दूध पिलाते वक्त बोले कि हे भगवान आप तो खीर सागर में लेते हैं इतना दूध पड़ा है आप मेरा दूध पीने का क्या जरूरत है। उनको अगर ऐश्वर्य भाव आ गया तो इसलिए अगर संस्कार देने का आपको क्या जरूरत है, आप तो भगवान है, सारे ब्राह्मण ब्रह्मा जी आपसे निकले और ब्रह्मा जी से सारे ब्राह्मण निकले हैं ऐसा बोलते हैं। इसलिए भगवान उनको ऐश्वर्य भाव को दिखाते हैं उनके जो वात्सल्य भाव को बढ़ाने के लिए। जैसे अर्जुन को विश्वरूप दिखाने के बाद फिर अर्जुन बोले कंफ्यूज हो गए बोले ये वापस दो हाथ बोले कृष्ण बन जाइए मुझे ये सब नहीं देखना है और प्रेम बढ़ गया। तो यशोदा मैया नंद महाराज कैसे देखते थे, ऐसे नहीं देखते थे कि ये सब ऐश्वर्य देखने के बाद इतने बोलते थे कि मेरे पुत्र भगवान मेरे पुत्र बने, ऐसे नहीं देखते थे वो देखते थे कि मेरे पुत्र भगवान है। जैसे अगर किसका बेटा प्राइम मिनिस्टर है तो वही बोले ना प्राइम मिनिस्टर मेरा बेटा है ऐसा सोचेगा तो डीलिंग नहीं कर पाएंगे, वो सोचते कि मेरा बेटा प्राइम मिनिस्टर है तो वात्सल्य भी रहता है और उनका ऐश्वर्य भी जानते हैं तो उसमें वात्सल्य का कोई बाधा नहीं आता है। इसलिए नंद महाराज और यशोदा सोचते कि मेरा बेटा कृष्ण महान है कितने वस्त्रों का वध किए हो उनका ये भाव था। तो तो वो सब कुछ करना चाहते हैं, उनको लालन पालन किए और अभी गर्ग मुनि आए हैं तो उनको बोल रहे हैं कि उन संस्कार नामकरण संस्कार कीजिए। तो ये संस्कार जरूरी है, संस्कार के ऊपर आगे आएगा श्लोकों में। तो इसमें बताते हैं कि आप ब्राह्मणों का, आप क्योंकि जन्म से ब्राह्मण है इसलिए आप सारे संसार का गुरु है, मानव समाज का आप गुरु है। पहले जमाने में, पहले युगों में ब्राह्मण और क्षत्रियों को महत्व ज्यादा दिया जाता था, ब्राह्मण और क्षत्रियों का। जैसे कि राष्ट्रीय यज्ञ हुआ तो बहुत सारे पूरा विश्व से राजा आएंगे और ब्राह्मण, बहुत बड़े बड़े पंडित ब्राह्मण आएंगे और बड़े बड़े यज्ञ करते थे। वैश्य और शूद्रों का महत्व था मगर कम था उन दोनों में से, मगर अभी वैश्य और शूद्रों का महत्व ज्यादा है। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े फैक्ट्री कंपनी बिल्डिंग्स बनाते हैं और शूद्र लोग वर्कर लोग काम करते हैं। ब्राह्मण और क्षत्रिय का कोई उसमें वैल्यू नहीं रहता है। अभी ब्राह्मण भी है, बचपन से ब्राह्मण है मगर वो लोग आर्मी में ज्वाइन करते हैं, धंधा करते हैं, इवन ब्राह्मण लोग कसाई खाना भी खोलते हैं। तो लोग अभी सब वैश्य और शूद्र की कैटेगरी में आ गए। तो पहले ब्राह्मण और क्षत्रियों का महत्व ज्यादा था और खास करके ब्राह्मणों का, ब्राह्मणों का शक्ति बहुत है, ब्राह्मण को साधारण नहीं होते थे। ब्राह्मण चाहेंगे तो कोई राजा को राजा बना सकते हैं और उसको उनके वो गादी से निकाल भी सकते थे, इतना शक्तिशाली रहते थे। जैसे कि महाराज बहन उनको वो सारे पूजा विधि यज्ञ को रोकते थे, तो उसे ब्राह्मण लोग हुंकार करके उनको बद कर दिए, उनको मार दिए। तो इसलिए ब्राह्मण क्या करते हैं, वही विश्व को चलाते हैं। क्षत्रिय सिर्फ नाम मात्र है मगर चलाने वाले ब्राह्मण है। एक बार प्रभुपाद को कोई बोले प्रभुपाद आप प्राइम मिनिस्टर बन जाइए भारत का तो बहुत अच्छा हो जाएगा, प्रभुपाद बोले मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं बनूंगा मगर मैं प्राइम मिनिस्टर का गुरु बनूंगा। तो इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय को गाइड करेंगे मगर ब्राह्मण जाके राजा नहीं बनेंगे। जैसे राजऋषि होते थे उनके पास भी वही ज्ञान रहता था जितना ज्ञान कि ब्राह्मण के पास रहता था, मगर क्योंकि वो रजोगुण से प्रेरित है तो वो लोग शिक्षा और ये टीचिंग नहीं कर सकते हो, टीचिंग उनके हाथ में नहीं होगा। इसलिए हर एक क्षत्रियो को जो भी राज्य चलाता है या देश चलाते है उनको गाइड करने के लिए ब्राह्मण का जरूरी है। अगर ब्राह्मण नहीं रहेगा तो प्रॉपर बताते कि वो नारकी जीवन जियेंगे वो, अगर कोई गाइड के लिए गुरु नहीं है तो। इसलिए इतना शक्तिशाली पावरफुल होते थे ब्राह्मण, ब्राह्मण का ताकत बहुत है। ब्राह्मण एक शब्द उच्चारण कर दिया अगर किसको श्राप दे दिए तो लग जाता है, जाओ तुम अगले जन्म में मगरमच्छ बन जाओगे तो बन जाते, तो अगले जन्म में पेड़ बन जाओगे बन जाते। इतना शक्ति रहता था उनके वाणी पे क्योंकि वो तपस्या करते हैं, उनके पास बहुत शक्ति रहता है। तो ब्राह्मण साधारण नहीं होते थे। इसलिए जब ब्राह्मण घर में आए तो उनको नंद महाराज ने स्वागत किए, क्योंकि नंद महाराज बुलाए नहीं थे, वासुदेव उनको भेजे थे, तो इसलिए वो आए थे अपनी नामकरण करने के लिए। तो इसलिए इतना शक्तिशाली ब्राह्मण रहते थे। एक कहानी है जैसे कि आप सब जानते हैं, एक बार एक ब्राह्मण गुरुकुल से पढ़ाई खत्म करके जा रहे थे, क्योंकि पढ़ाई होने के बाद शादी करने जाते हैं ब्रह्मचारी लोग, बहुत तपस्वी थे, पतले है काले है, वो जाके एक जो रास्ते से जा रहे थे जंगल से उसमें एक कुछ तो ग्रास था, कुछ तो घास जो कि लगता है तो पैर में चुभता है ना, दर्द होता है, तो इसलिए बहुत सारे थे पैर वो घास, वो क्या करते कुछ डाल रहे थे वो रूट पे, उनके जड़ पे कुछ तो डाल रहे थे। तो उधर से एक जो नेता रहता है उन लोग का आर्मी का चीफ रहता है वो आए, उधर से जा रहे थे रथ में, उनका नाम था सत्ता आप लोग जानते हैं सर। तो बोले कि ये ब्राह्मण क्या कर रहे हो इधर, तो बोल रहे मैं अभी गुरुकुल से आया हूँ, घर जा रहा हूँ शादी करने के लिए अभी, मगर ये रास्ते में ये सब आप क्या कर रहे हो, क्योंकि ये सब मेरे पैर में दुख रहा है इसलिए, ये सब दर्द दे रहा है इसलिए मैं उसको उखाड़ना चाहता हूँ, इसलिए दही डाल रहा हूँ उसके नीचे घास के नीचे ताकि वो कम्प्लीटली वो निकल जाएगा, फिर दोबारा कभी नहीं होगा। तो हंसने लगा, बोला अगर आपको दुख रहा है पैर में चप्पल पहनो, इतना सारा घास को उखाड़ने का क्यों प्रयास कर रहे हो, नहीं तो आप दूसरे रास्ते से चले जाओ। मगर वो ब्राह्मण क्या बोला कि मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मैं तो चला जाऊंगा जैसे भी, मगर जब और भी आने वाले लोग जिसके पास चप्पल नहीं है, बहुत लोग आने वाले हैं, उन लोगों का क्या होगा। इसलिए ब्राह्मण का एक गुण है कि ब्राह्मण कभी अपने लिए नहीं जीता है, वो हमेशा दूसरों के लिए जीता है ब्राह्मण। तो इसलिए हमको ये याद रखना चाहिए जो ब्राह्मण है वो हमेशा दूसरों के लिए जीना चाहिए, दूसरों के भलाई के लिए जीना चाहिए। तो ये सुन के आश्चर्य हो गए, फिर पूछे आप कौन है, आप बहुत बुद्धिमान लगते हैं बहुत चतुर लगते हैं। तो बोले मैं चंद्रगुप्त, मैं विष्णुगुप्त चाणक्य हूँ, उन्होंने बताया कि मैं गुरुकुल से अभी पढ़ाई करके आया। तो फिर दोनों का बात चल रहा था, फिर एक सैनिक ने बोला कि हमारा अभी राज्य में हमारा राजा जो तभी नंदपाल राजा नंदपाल थे मगध का, वो एक आयोजन किए सारे ब्राह्मणों को दान दे रहे, तो इनको भी बुलाइए। तो सत्तार बोले जो पहले राजा थे वो उनको निकाल कर मिनिस्टर बना दिए थे, वो बोले कि चलिए आप हमारे राज्य में और राजा को आप गाइड कर सकते हैं। बोले नहीं, मैं किसके अंडर में नहीं रहूंगा और किसका नौकर नहीं बनूंगा। जो ब्राह्मण होते किसका नौकर नहीं बनते, वो पैसा के लिए किसके सामने झुकेंगे नहीं, संपत्ति के लिए, पैसा के लिए, पोस्ट पोजीशन के लिए कभी किसके सामने नहीं झुकते। तो इसलिए ये वो बोले मैं किसका नौकर नहीं बनूंगा, किसका चापलूसी नहीं करूंगा, धन के बोले या धन के लिए या पोस्ट के लिए। तो बोले नहीं नहीं आप स्वतंत्र है, आप आइए सिर्फ लोगों के भलाई के लिए, आपके राजा को राजा के पास रहिए, राज्य हमारे राज्य में। बोले नहीं मैं नहीं आ सकता। फिर रिक्वेस्ट करने वाले ठीक है आता हूँ, मगर जो जैसे ही गए उनके साथ उधर आयोजन किया गया था एक सभा जिनमें सारे ब्राह्मणों को दान देते थे, राजा दान देने के लिए तैयार थे। तो तभी पहले वो जैसे देखे चाणक्य को, बोले कौन है ये काला सा ब्राह्मण सामने लेके आया, कौन लेके आया इनको। उनको देख के गुस्सा है, ऐसे असुंदर दिखता है, काला है ये, इसको पतला सा है, ऐसा गाली देने लगे। वो देख के चाणक्य को बहुत गुस्सा है, वो खड़ा हो गया, बोला आप कैसे राजा हो, आपके पास ज्ञान नहीं मालूम पड़ता है, क्योंकि आपको अतिथि देव भव, अतिथि तो भगवान का वो प्रतिनिधि माना जाता है, और ऊपर से मैं ब्राह्मण हूँ जो ब्रह्मा का पुत्र माना जाता है, आप इस दोनों ओर से आप गलती कर रहे हो मुझे अपमान करके, हाँ ऐसा राजा नहीं होना चाहिए। तो फिर राजा नंदपाल बोल रहे हैं कि मुझे आप प्रवचन दे रहे हो, जाओ यहाँ से, नहीं तो आपको बद्ध कर दूंगा मैं, हाँ हमको जो भी राजा के मुंह पे बोलते उसको बद्ध हत्या किया जाता है उसको। तो फिर गुस्सा होकर चाणक्य क्या कि आपने सीखा खोल दिए, बोले तब तक मैं सीखा नहीं बांधूंगा जब तक मैं आपको ये राजगद्दी से नहीं हटाता हूँ, बदला नहीं लेता हूँ, ऐसा बोल के जा रहे थे। फिर राजा को बहुत गुस्सा आया, फिर नंदपाल बोला कि जाओ उसको अरेस्ट करो और उसको बंदी बना दो। तब उसका पत्नी बोली नहीं नहीं वो ब्राह्मण है, जब ब्राह्मण को ऐसा करेंगे तो आपका गलती हो जाएगा। फिर नंदपाल सोचे ठीक है उनको छोड़ दो करके, उनको छोड़ दिए, जाने दिए, और वो सोच रहे थे कि इनको देख के मुझे परशुराम का याद आ रहा है, क्योंकि वो इतना गुस्से वाले थे, कितने सारे राजाओं को वो पूरा 21 बार सारे क्षत्रियों को विनाश कर दिए थे। तो ऐसा ब्राह्मण बहुत शक्तिशाली होते हैं, बोल के गया मतलब शक्ति है इसके पास, कुछ भी कर सकते हैं, उनके अंदर एक डर आ गया था कि ब्राह्मण इतना शक्तिशाली होते हैं। फिर वो चाणक्य गए, जाके चंद्रगुप्त को मिले, चंद्रगुप्त को मिलकर उनको बोले कि मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा और मैं आपको सम्राट बनाऊंगा। फिर चंद्रगुप्त को पहले ग्रीक आर्मी में डाले, फिर उसके अंदर ट्रेनिंग सब सीखने के बाद चाणक्य क्या के बोले कि उसके अंदर ही झगड़ा लगाओ, दो टीम बनाओ। तो चंद्रगुप्त को दो टीम बना के फिर उनके अंदर ही झगड़ा लगा दिए, फिर उनको लाके इस मगध में, मगध राज्य में उनके आर्मी में डाले, फिर उधर भी दो डिवाइड किए, फिर 50% से भी ज्यादा लोग मगध के जो राजा नंदपाल थे उनके अगेंस्ट में हो गए थे। ऐसा होते हुए चंद्रगुप्त को फिर सम्राट बना दिए, मतलब सम्राट चंद्रगुप्त थे। मगर एक बार जब वो चंद्रगुप्त वो अपने माता पिता को शायद बंदी बनाने के लिए चाणक्य बोले थे, तो चंद्रगुप्त को गुस्सा आया, बोला मैं सम्राट हूँ, आप कैसे डिसीजन ले सकते। तो फिर चाणक्य पंडित बोले आप सम्राट है, विश्व को सम्राट कभी क्षत्रिय नहीं चला सकता है, मैं सम्राट हूँ, मगर आप सिर्फ नाम मात्र पे है। कंट्रोल कौन कर रहे थे पूरा विश्व को, चाणक्य कर रहे थे, चाणक्य सम्राट थे हर एक चीज में। बाद में पता चला उनको कि इनके जो मिनिस्टर थे वो सब लोग चाणक्य का सुनते थे और ये सोचता था मैं सम्राट हूँ। इसलिए हर एक क्षत्रिय अगर ब्राह्मण के द्वारा कंट्रोल में है तो हर एक चीज बराबर करेंगे, क्योंकि उनके पास जो रजोगुण रहता है वो बराबर डिसीजन नहीं ले पाते कि इतना शक्तिशाली ब्राह्मण चाणक्य थे। ऐसा एक ही नहीं, अनेक ब्राह्मण है जो ब्राह्मण का इतना शक्ति रहता है, ब्राह्मण क्योंकि वो तपस्या करते हैं, वो संतुष्ट है, सबसे बड़ी बात है वो आत्मतृप्त है, उनको कुछ चाहिए ही नहीं। तो एक भक्त मुझे बोल रहे थे तो जी पर्सनालिटी डेवलपमेंट कैसे करना है, मैं बोला पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने का जरूरत नहीं है, आप जितना भौतिक दुनिया से विरक्त है आपका पर्सनालिटी उतना डेवलप्ड है, और प्रयास करने का जरूरत नहीं, प्रवचन सुन के आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते। देखिए जितना जो विरक्त है, जो संतुष्ट रहता है, अपने आप में रहता है, वही लोग को सब लोग सम्मान देते हैं। जैसे महाराज लोग आते हैं, कोई विरक्त है, अवधूत जैसा रहता है, उसको पड़ी नहीं दुनिया से कुछ, सब लोग आकर पैर पकड़ेंगे, और जो व्यक्ति चाहता है कि मेरा पैर पकड़ो फिर वो निंदा करेंगे, क्या सम्मान चाहता है, आशीर्वाद देने के लिए आ गया इधर। तो इसलिए जब सम्मान की इच्छा रहता है या भौतिक आसक्ति रहता है वही हमारा कमजोरी है। तो इसलिए वो ब्राह्मण मतलब वो दुनिया से विरक्त होना चाहिए, और वही व्यक्ति राजा बन सकता है या दुनिया को चला सकता है जो व्यक्ति को भोग करने का प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए पहले राजा महाराज विरक्त होते थे, जैसे युधिष्ठिर महाराज अर्जुन बोले थे युद्ध करने से पहले मुझे राज्य नहीं चाहिए, ये उन लोग दुर्योधन को ही राजा बनने दो, क्योंकि वो विरक्त थे। भगवान बोले आप ही योग्य व्यक्ति हो, युद्ध करो और आप राजा बनो, आपको भोगना नहीं है, आपको प्रतिनिधि के रूप में आप राज्य को चलाओ। फिर अर्जुन ने युद्ध जीत के राजा बने थे, मगर कुछ दिन के बाद वो तुरंत छोड़ के सब लोग जंगल गए थे पांचों भाई द्रौपदी के साथ। तो इसलिए वो राज्य भोग करने का अगर प्रयास करेंगे तो वो व्यक्ति बराबर कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि आजकल के जो राजाएं हैं, राजा भी नहीं बोल सकते, आजकल जो भी कंट्रोल करने के लिए है, जो भी नेता है, वो लोग भोग की प्रवृत्ति में है, इसलिए वो लोग क्या करते हैं सारे नारकीय बना दिए, जैसे कि होटल, रेस्टोरेंट, बियर बार, इसको भी सैंक्शन करते हैं, कसाई खाना को भी सैंक्शन करते हैं, कैसे राजा है ऐसे लोग। तो इसलिए राजा हमेशा ब्राह्मण के द्वारा ब्राह्मण उनको गाइड करना चाहिए, इतना शक्तिशाली ब्राह्मण होते हैं। जैसे कि हम देखते हैं राजा कौशिकी जो बाद में जाके विश्वामित्र बने, वो उधर एक बार जा रहे थे तो देखे विश्वामित्र मुनि का इतना अच्छा वशिष्ठ का इतना अच्छा कुटिया देख के उधर आके देखने के लिए आए, तो वहाँ फिर वशिष्ठ जी बोले प्रसाद खाने के लिए बोले, तो बोले नहीं 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 मैं अभी नहीं खाऊंगा, सिर्फ देखने आया ये आपका ये जो आश्रम है, नहीं आपको खाना ही पड़ेगा। बोला ठीक है, फिर इतना सारा व्यंजन लेके आए खाने के लिए, तो जब जैसे ही वशिष्ठ मुनि देखे विश्वामित्र बोले कि ये सब इतना कहाँ से आया, तो बोले कि हमारा जो ये गाय है तो सारे इच्छा को पूरा करता है। ये सुन के उसको बहुत ईर्ष्या हुआ कौशिक के राजा पर, बोला राजा के पास सबसे बेस्ट चीज होना चाहिए, आपके पास कैसा है, ये मुझे चाहिए गाय। तो बोले नहीं ये ब्राह्मण का प्रॉपर्टी है, यज्ञ के लिए हम दूध घी इसमें इनसे ही लेते हैं, हम नहीं दे सकते। बोले नहीं नहीं आपको ये देना ही पड़ेगा, फिर वो मना किए, वो कुछ बोल नहीं पाए वशिष्ठ मुनि, तो गाय रोने लगा कि वो बोला कि आप मुझे कैसे छोड़ सकते हैं, मैं आपके शरण में हूँ। वो बोले मैं क्या कर सकता हूँ, क्षत्रिय है राजा है और मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उनके साथ तो लड़ाई नहीं कर सकता। तो फिर वो बोले गाय बोले मुझे ऑर्डर दो आप कि उनके नाम सबला था कि आप मत जाओ करके ऑर्डर दो, मैं नहीं जाऊँगा। बोले ठीक है आप मत जाओ। वो उनके ही शरीर से आंख से कान से अनेक सैनिक निकले और वो सारे सैनिकों को परास्त कर दिए। वो बाद में तपस्या करते करते विश्वामित्र बन गए, ब्रह्म ऋषि बन गए, राजा ऋषि महर्षि फिर ब्रह्म ऋषि बने। फिर वो बाद में तपस्या करके आके बहुत सारा अस्त्र जो दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ था उसमें वशिष्ठ को अटैक किए, सारे उनके ऋषि मुनियों को अटैक किए। तभी वशिष्ठ क्योंकि युद्ध नहीं कर सकते मगर उनका जो एक दंडा रहता है ना हाथ रखने के लिए जप करने के लिए, वो दंडा से सब सारे चीज जो अस्त्र थे उस दंडा के अंदर चला गया, सब सब कुछ वो विड्रॉ कर सकते थे, इतना पावर था उनके अंदर। फिर जब ब्रह्मास्त्र छोड़े वशिष्ठ इतना विशाल रूप लिए अग्नि जैसा कि ब्रह्मास्त्र भी उनमें समा गया, कुछ नहीं हुआ उनको कि इतना शक्ति रहता है ब्राह्मण, मगर दिखाते नहीं है ब्राह्मण क्योंकि उनको कुछ चीज चाहिए नहीं रहता है, क्योंकि उनको कोई भौतिक चीज नहीं चाहिए, उनको ना राज्य चाहिए ना धन चाहिए कुछ नहीं, ना धनम ना जन्म ना सुंदर, वो ब्राह्मण के लिए, अगर कोई ब्राह्मण है तो सारे चीज से वो विरक्त रहता है, इतना शक्ति रहता है ब्राह्मणों के पास। इसलिए हम जो जो ब्राह्मण है या ब्राह्मण बनना चाहते हैं हमारे अंदर ये सब गुण भी होना चाहिए। वो क्या उनके ब्राह्मणों का गुण, जैसे भगवद गीता में बताए समो दमो तपस्या शांति राजम एव ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव, वो सम दम तप उनको तपस्या भी करते। सम सम मतलब कि हम बोलते हैं सबको समान देखना, एक सम मतलब बोलते हैं इंटरनल सेल्फ कंट्रोल, एक एक्सटर्नल होता है मैं ये दे नहीं देखूंगा, टीवी नहीं देखूंगा तो टीवी को बंद कर देते हैं या आंख बंद कर देते हैं, नहीं तो कुछ पोस्टर देखते बाहर जाते तो मुंह घुमा लेते, वो दम है एक्सटर्नल कंट्रोल बोलते हैं। सम मतलब इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल मतलब अंदर से ही इच्छा ही नहीं है, और आपके सामने अगर रसगुल्ला दिया आपको अंदर से इच्छा ही नहीं तो क्या खाएंगे आप, तो अंदर से जो अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया उसको बोलते सम। वो हर एक चीज को समान दृष्टि से क्यों देखता है, क्योंकि वो किस चीज में वो अटैचमेंट नहीं है उसको, वो पत्थर हो या सोना हो वो दोनों को सेम देखता है क्योंकि वो किस चीज से उसका मतलब नहीं रहता है। तो ये सारे गुण ब्राह्मण के अंदर रहते हैं और वो तपस्या करते हैं, सबसे बड़ी चीज है तपस्या। हमारे लिए भी तपस्या है, सुबह मंगलारती उठना आके जप करना और भगवतम क्लास में बैठना और जो भी गुरु का आदेश उसको पालन करना, ये कलयुग के लिए अभी इतना ही तपस्या काफी है। एकादशी को 12 बजे तक भूखा रहना वो तपस्या है, निर्जला को ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए सब गुण है ब्राह्मण के अंदर क्योंकि तपस्वी है, इसलिए उसके बाद बहुत शक्ति रहता है। मगर इससे ब्राह्मण का गुण है मगर वो प्रॉपर यहाँ गर्ग मुनि को वो ब्राह्मण के रूप में नहीं देख रहे हैं नंद महाराज की, जो कर्मकांडी ब्राह्मण रहते हैं जो नाम के लिए सिर्फ ब्राह्मण कहलाते हैं। ब्राह्मण मतलब हमारे मन में आता है कि एक उनका थ्रेड रहेगा, उसके बाद वो यज्ञ करते रहेंगे सिखा रहेगा और कोई कोई पान भी खाता रहेगा, जैसे हम जाते हैं अलग अलग धाम में तो पान खाते खाते आपको दक्षिणा चंदा मांगेंगे, ये मन में बैठ गए ब्राह्मण मतलब वो है, वो कर्मकांडी ब्राह्मण अलग है। मगर जो असली ब्राह्मण है वो ब्रह्म जानाति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता है, ब्रह्म मतलब वो ब्रह्म नहीं जो कि ब्रह्म थी परमात्मा थी भगवान में थी शब्द थे, वो वाला ब्रह्म नहीं जो भगवान का जो शरीर से जो तेज निकलता है। ब्रह्म मतलब आत्मा को भी ब्रह्म बोलते हैं और भगवान को भी ब्रह्म बोला जाता है। तो जो भगवान को जानता है परम ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, वो ब्राह्मण है जो भगवान को जानता है और वही वही गुरु बन सकता है। जैसे यहाँ बताते हैं नंद महाराज, आते आप सहज ही हर व्यक्ति का आध्यात्मिक गुरु है, क्यों, क्योंकि आप ज्योतिष शास्त्र में भले भांति अवगत है, ऐसे होते हुए क्योंकि आपको मेरे घर में आए अतएव दोनों पुत्रों को संस्कार दीजिए। आप सारे शास्त्रों को भी जानते हैं और पिछले श्लोक में बता दें क्योंकि आप वैष्णव है करके, आप क्योंकि वैष्णव है आप भक्त है इसलिए आप महान हैं, ऐसे बताते हैं कि पिछले श्लोकों में, तो क्योंकि वो गर्गमुनि वैष्णव थे और ब्राह्मण भी थे इसलिए उनका महत्व है। सिर्फ कर्मकांडी ब्राह्मण से हमको उनके ऊपर भरोसा नहीं या उनके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। जैसे कि हम बहुत सारे संस्कार कराते हैं तो हम जैसे कि यज्ञ हुआ ये वो, तो कर्मकांडी ब्राह्मण को बुलाते बुलाते इतना हैबिट हो गया है कि जो वैष्णव ब्राह्मण आते हैं तो उनको हम रेस्पेक्ट नहीं दे पाते। ठीक है आप आइए कीर्तन कीजिए, मगर हमको कर्मकांडी ब्राह्मण भी चाहिए, है ना। तो इसलिए हम अभी हरिनाम संकीर्तन यज्ञ करेंगे तो उतना विश्वास नहीं संकीर्तन यज्ञ पर, क्योंकि संकीर्तन यज्ञ है वो, अलग अलग युग का अलग अलग यज्ञ था। इस जो अभी कलयुग के लिए यज्ञ है वो संकीर्तन जप यज्ञ है, तो कीर्तन यज्ञ इतना विश्वास नहीं है, इसलिए हमको वो वाला यज्ञ करना ही पड़ता है। इसलिए वो होम पहले तो बड़ा बड़ा इतना बड़ा एरिया रहता था, कितने सारे ब्राह्मण आके असली घी में यज्ञ करते थे। मैं पहले सुनता था कि यज्ञ में सब कूद गए, क्योंकि यज्ञ में कूद के इतना छोटा सा घर में यज्ञ उसमें कूद कैसे गए, वो तो आग बुझ जाएगा उसमें कूदेगा तो मैं बोला बाद में पता चला इतना बड़ा यज्ञ रहता था। अभी तो उसको छोटा होते होते कलयुग का प्रभाव से बहुत छोटा हो गया, अभी टीन का डब्बा आता है उसको रख के यज्ञ करते हैं। तो इसलिए वो कर्मकांडी ब्राह्मण के बारे में नहीं बताया गया है, मगर जो ब्राह्मण कौन है जो भगवान का जानता है, जो वैष्णव है वही ब्राह्मण है, और वो व्यक्ति ही गुरु बन सकता है। अगर वो ब्राह्मण है सारा गुण भी है, अगर वो व्यक्ति भक्त नहीं है तो उसका उसको गुरु नहीं बन सकता है। गुरु बनने के लिए वो वैष्णव बनना जरूरी है। इसमें एक श्लोक है, सत्कर्म निपुनो विप्रो मंत्र तंत्र विशारद अवैष्णव गुरु न सियात वैष्णव स्वपचो गुरु। स्कॉलरली ब्राह्मण एक्सपर्ट इन ऑल सब्जेक्ट ऑफ वैदिक नॉलेज इज अनफिट टू बिकम ए स्पिरिचुअल मास्टर विदाउट बींग ए वैष्णव और एक्सपर्ट इन द साइंस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति में अगर वो एक्सपर्ट नहीं है, उनके पास अगर ये भक्ति का ज्ञान नहीं है तो गुरु नहीं बन सकते। बट ए पर्सन बॉर्न इन ए फैमिली ऑफ लोअर कास्ट कैन बिकम स्पिरिचुअल मास्टर इवन ही इज ए वैष्णव और कृष्णा कॉन्शियस। अगर वो कोई भी है शूद्र भी है और वो वैष्णव बन गया तो उसको ये जो सारे ब्राह्मण का गुण ऑटोमेटिक आते हैं। जैसे कि हम टीवी खरीदते हैं, टीवी खरीदने पर हमको उसमें जो थर्मोकोल रहता है और उसका कवर रहता है ऑटोमेटिक फ्री में मिलता है। आप कवर के लिए पैसा नहीं देते, आप टीवी के लिए पैसा देते बाकी सब मिल जाते हैं उसमें। हमको सामान खरीदते हैं उसमें थैली भी फ्री में देता है, वैसे आप अगर वैष्णव बन गए तो आपको थैली फ्री में मिल जाएगा। वैष्णव ब्राह्मण का सारे गुण ऑटोमेटिक आता है, उसके लिए प्रयास करने का जरूरत नहीं। इसलिए कोई भी भक्त बोलते हैं मैं तपस्या करूंगा और मैं ब्राह्मण का गुण अपना, मुझे आज से नंबर बनना है, मुझे शांत बनना है, बहुत सारा बाहरी रूप से प्रयास कर रहे गुणों को लेने के लिए। आप प्रयास करेंगे कुछ दिन के लिए गुण दिखाई तो देगा, बाद में आपका असली रूप आ जाएगा। आप नंबर प्रयास कीजिए, फिर बाद में कोई बोले अच्छा सेवा की, कोई बोलेगा क्या आलसी है कुछ करता नहीं, आप आलसी समझते हैं मुझे, मैं कितना सेवा करता हूँ, क्रोध प्रकट हो जाता है। तो बाहर से नम्र तो मत दिखाइए, अगर वैष्णव बन गए जो व्यक्ति कृष्ण को जानते हैं जो भक्ति करते हैं वो मार्ग में ऑटोमेटिक वो नम्र बन जाते हैं। और नम्रता का असली डेफिनेशन ये है कि जो व्यक्ति सम्मान पाने का इच्छा नहीं करता है वही नम्र है, प्रॉपर बताते हैं भगवदगीता के पटपट में। इसलिए सारे गुण अगर पाना है तो हमको वैष्णव बन जाएंगे तो ऑटोमेटिक सारे गुण आ जाते हैं, वही व्यक्ति गुरु बन सकता है क्योंकि उसके पास असली ज्ञान है। जैसे अलग अलग ब्राह्मण है, कोई कर्मकांडी ब्राह्मण है उनके पास कितना ज्ञान है, वो यज्ञ करने का कुछ मंत्र जानते हैं, वो भी बराबर नहीं बोलते हैं। वो क्या बोलते हैं उनको ही समझ में आता होगा, बाकी लोग को समझता नहीं, वो लोग सोचते कुछ दिव्य मंत्र बोल रहे हैं कुछ समझ नहीं रहा है हमको। तो इसलिए अलग अलग लोग के पास लिमिटेड नॉलेज रहता है, मगर जो वैष्णव होते हैं उसके पास सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है। जैसे मैं पहले सोचता था कि विश्व मतलब ये 9 ग्रह है सूर्य है, मेरा इतना ही लिमिट रहता है। अभी मालूम पड़ा कि जो इतना बड़ा जो है उसका जो कमल फूल है ब्रह्मा जी का, उसके अंदर ही भौतिक दुनिया है। इस जगत ऐसे अनेक अनेक ब्रह्मांड है जो अराउंड अक्षय विष्णु से निकलते हैं, तो और थोड़ा थिंकिंग ब्रॉड हो गया। और उसके ऊपर स्पिरिचुअल वर्ल्ड है जो अनलिमिटेड है, और उसमें सर्वश्रेष्ठ गोलोक वृंदावन है, उसमें राधा कृष्ण रहते हैं। तो ये सब नॉलेज जब वैष्णव बनने के बाद या भक्ति में आने के बाद पता चलता है। तो सर्वश्रेष्ठ नॉलेज है और जो एसेंस है सार है वो नॉलेज हमारे पास आ जाता है जो भक्ति करता है। बाकी ब्राह्मणों के जो कर्मकांडी ब्राह्मण उन लोगों के पास ये ज्ञान नहीं रहता है। तो इसलिए वही गुरु बन सकता है जो भक्त है, अगर भक्त नहीं है तो ऐसे गुरु को हम स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो जैसे कि श्लोक आप जानते यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचन सर्वे गुणे तत्र समासते सुरा हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण मनोरथेन सतिधाव वतो बही। तो बोलते हैं कि अगर कोई व्यक्ति One who has unflinching devotion for the personality of Godhead has all the qualities of the demigod. देवताओं का सारे गुण आ जाते हैं। जो व्यक्ति भगवान का भक्ति करता है उनके पास सारे गुण ऑटोमेटिक आता है। But one who is not a devotee of the Lord has only material qualification. They are of little value. उनका कोई वैल्यू नहीं रहता है। This is because of hovering on the material plane and is certain to be attracted by the glaring material energy. तो जो भक्त होते हैं उनके पास ऑटोमेटिक सारे गुण आ जाते हैं, उनको अलग से प्रयास करने का जरूरत नहीं है। कोई बोलेंगे कि नहीं उनके पास इतना भौतिक ज्ञान है, तो भौतिक ज्ञान और भौतिक गुण किससे तुलना किया गया है? जैसे कि एक गिद्ध रहता है ना, ऊपर उड़ता है, बहुत ऊपर जाता है, लोग सोचते कितना ऊपर है। देखो कोई साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इतना पढ़ाई किया, कितना ज्ञानी है, पंडित है, बहुत शास्त्रों का ज्ञान है, ये सब ऐसा है जैसे गिद्ध बहुत ऊपर जाता है, और ऊपर जाने पर नीचे किस रूप से देखते हो, क्या ढूंढता है नीचे? डेड बॉडीज ढूंढता है, वो सबको ढूंढता है। तो उसका चेतना किस में है? डेड बॉडी में। तो ये सब ज्ञान इतने ऊपर चले जाएंगे और ढूंढेंगे वही मरा हुआ चीजों को, जड़ वस्तु को, मृत्यु वस्तु को, वो चीज को खाने के लिए वो इतना ऊपर जाते हैं। तो ऐसे ज्ञान का क्या फायदा है, इतने ऊपर जाने के बाद भी अगर डेड बॉडी को ढूंढेंगे तो? इसलिए असली ज्ञान क्या है, वो जो वेद का सार जानते हैं, जो कृष्ण को ही भगवान मानते हैं, जो वैष्णव है उनको शरण में अगर जाएंगे, वो असली ज्ञान देके हमको संसार से उद्धार कर सकते हैं। तो बहुत लोग के पास बहुत सारा ज्ञान है, मगर वो लोग कृष्ण को भगवान नहीं मानते। कोई बोलेगा मैं पंडित हूँ, पुजारी हूँ, ये बहुत कुछ बोलते हैं, मगर उनको पूछते हैं अगर कृष्ण कौन है, बोलते हैं विष्णु का अवतार है। फिर अलग अलग बोलते कि नहीं ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, देवी देवता भी भगवान है। वो जब तक पूरा स्ट्रांग विश्वास जिसको नहीं कि कृष्ण ही भगवान है, तब तक हम अपने आप को वैष्णव नहीं कह सकते, जब तक कृष्ण में पूरा मति नहीं है। जैसे इसलिए एक श्लोक भागवत में बताया गया, सेकंड फर्स्ट के अंत में बोले तस्मा देके न मनसा भगवान सातुताम पति श्रोतव्य कीर्तितव्य ध्येय पूज्यस्त नित्यदा। उसमें बोला कि तस्मा एके न मनसा, बोले एक मन में जो कृष्ण को भक्ति नहीं करता है, उनके बारे में नहीं सुनता है, उनके बारे में नहीं बोलता है, वो व्यक्ति क्या बोलते, वो जो भगवान जो कि भक्तों को रक्षा करने वाले कृष्ण, उनका अगर एक मन से अगर आराधन नहीं करते फिर वो कैसे भक्त है? भक्त नहीं थे उनको, एकाग्र मन से उनको भक्ति करना चाहिए। क्यों एक वन पॉइंटेड अटेंशन क्यों बोला गया? ये वन पॉइंटेड का मतलब क्या है? क्योंकि और कोई भी और किसको भी ना उनसे हम बड़े मानेंगे ना, और कोई टॉपिक पे हम डेबेट होंगे ना, कोई उनके प्रति भौतिक आसक्ति है, कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ कृष्ण को ही जानते हैं, वो कृष्ण ही सब कुछ है। ये श्लोक हम पढ़ने के बाद भी जैसे कि बहुत लोग जानते हैं अकेला इसको कृष्ण आरा सब भृत्य, बाकी सब उनका सेवक है। हम बोलेंगे बलराम जी उनका सेवक है, हाँ सेवक है, और नरसिंह भगवान उनका सेवक कैसे? हरे कृष्ण को छोड़ के उनका कोई भी एक्सपांशन है, कोई भी इनकारनेशन है, वो कृष्ण को छोड़ के बोला गया। ऐसा नहीं बोले कृष्ण और उनका अवतार को छोड़ के बाकी सब उनका सेवक है, कृष्ण ही भगवान है, बाकी सब उनका भृत्य है। और सारे एक्सपांशन बलराम जी से आते हैं, और बलराम जी से भी भगवान है, उनको सेवा कर रहे हैं, तो और कैसे और कोई भगवान हो सकता है? इसलिए सिर्फ कृष्ण, ऐसा नहीं कि और कोई भी इनकारनेशन पे भी हमारा अट्रैक्शन है। हालांकि वो वैकुंठ जा सकते हैं, मगर सिर्फ कृष्ण को ही रिकमेंड किया गया, क्योंकि जो कृष्ण को ही जानते हैं, जो कि भगवान भक्तों का रक्षा करते हैं, कृष्ण ही भगवान है। ये चीज को अगर जानते हैं जो व्यक्ति, और वो एकाग्र मन से भगवान की सेवा में लग गए हैं, ऐसे व्यक्ति को हम गुरु बना सकते हैं, ऐसे व्यक्ति के शरण में हम जा सकते हैं, तो ही हमारा उद्धार हो सकता है इस भौतिक दुनिया पे। तो इसलिए उसने यहाँ नंद महाराज बोलते हैं कि आप वैष्णव भी है, आप भक्त है, और आप ब्राह्मण भी है जन्म से, इसलिए आप सबका गुरु है। जो ब्राह्मण है वो सबका गुरु क्यों है? क्योंकि किसी के लिए नहीं है, वो ये नहीं बोल सकते मेरा परिवार है, इसलिए वो सबका सारे परिवार उनका है, वो सबके हित के लिए ही वो जीते हैं ब्राह्मण, और इसलिए वो सबका गुरु है। क्यों गुरु है? क्योंकि उनको कोई चीज का वो आसक्ति नहीं है, किसी चीज में अटकते नहीं है, इसलिए वो सारे परिवार उनका ही है, इसलिए सबको गाइड करते हैं, और वो गुरु बनने के योग्य है, उसको सबको समान दृष्टि से देखते हैं, क्योंकि ब्राह्मण है वैष्णव है, इसलिए आप जन्म से ब्राह्मण है, इसलिए आप गुरु है करते हैं, नंद महाराज बोलते हैं। और आगे आगे श्लोक में हम देखेंगे कि वो भगवान कृष्ण का और बलराम का नामकरण भी करवाएंगे। संस्कार, संस्कार कितना जरूरी है वो आगे के श्लोक में आपको क्लास में सुनने को मिलेगा कि हर एक संस्कार कितना जरूरी है, बिना संस्कार का लोगों को क्या हाल होता है, अगर संस्कार दिए तो क्या परिवर्तन होता है, वो हम बाद में कल सुनेंगे। एक एग्जाम्पल देता हूँ कि संस्कार कैसा खतरनाक होता है जिसके संस्कार नहीं देते। एक मैं एग्जाम्पल सुन रहा था क्लास में कि एक बच्चा जन्म होते ही वो रो रहा था, तो जब टीवी को देखता है वो रोना बंद करता है, जब टीवी बंद हो जाता है तो रोना चालू करता है, तो क्योंकि वो बचपन से टीवी का हैबिट बना दिए, तो इसलिए वो टीवी पे पूरा डिपेंड है। ऐसे बहुत सारे जो हम गलत संस्कार देते हैं बच्चों को, तो धीरे 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 मनुष्य जीवन को व्यर्थ गवाता है। जैसे कि स्त्री, मतलब हम क्या सोचते हैं कुल स्त्री, जैसे कि वो बोलते उसका चेस्ट लेडी बोलते हैं ना, तो स्त्री मतलब जो कि सभ्य है और जो पतिव्रता है, वो स्त्री हमारे मन में आते हैं, एक हाई क्लास स्त्री। वैसे वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है ब्राह्मण, जो समाज में जरूरी है। क्यों कुलस्त्री जो है सभ्य स्त्री है या जो पतिव्रता है उनका जरूरी क्यों है? क्योंकि वो जो संतान उत्पन्न करेंगे हाँ, जिनके संस्कार गर्भगत संस्कार हुआ है, सब संस्कार हुआ है, तो व्यक्ति समाज का हित कर सकता है। जैसे कि ब्राह्मण समाज का हित करता है, नहीं अगर वो ऐसे ही है वर्ण संकर है तो समाज का विनाश कर देगा। हाँ, अगर ब्राह्मण भी नहीं है तो भी समाज का विनाश हो जाएगा। वो प्रॉपर तात्पर्य बताते हैं कि नारी की जो समाज है नारी की जीवन जिएगा, इसलिए समाज में ब्राह्मणों का बहुत जरूरी है। मगर हमारा उद्देश्य ब्राह्मण बनना नहीं है, हमारा उद्देश्य वैष्णव बनना, तो ऑटोमेटिक हम ब्राह्मण बन जाएंगे। तो इसलिए ब्राह्मण अलग से बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, नहीं तो ब्राह्मण बनते बनते हम कर्म करने ब्राह्मण बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए। यज्ञ करेंगे मैं ब्राह्मण हूँ, तो इसलिए थ्रेड से यज्ञ से कोई ब्राह्मण नहीं बनते, गुण होना चाहिए। अगर गुण है तो आप ब्राह्मण है। अगर इसलिए बोलते हैं कि गुण कर्म विभाग कि डिवाइड कैसे किया गया, आप तो गुण से और कर्म से। आपका गुण है गुस्सा करते हैं, क्रोध करते हैं, आप बहुत सारा आपके अंदर ईर्ष्या है, द्वेष है, और ऊपर से आप कुछ दूसरे दारू का धंधा करते हैं। भगवदगीता लीजिए, दिखाते पूरा थ्रेड निकाल के, मैं ब्राह्मण हूँ, जन्म से ब्राह्मण हूँ, आप कैसे ब्राह्मण है, दारू बेचते हो आप कैसे ब्राह्मण हो सकते हैं। एक बार मैं भगवदगीता बेच रहा था भाईंदा ने स्टेशन में, तो एक बियर बार था, मैं उधर से जा रहा था, मैं उनको दिखाया भगवदगीता, वो तो पूजा चालू कर रहे थे, मुझे देख के पूजा और लंबा खींचे ये जाएगा करके, तो मैं गया नहीं, मैं बोला आज आपको देख के जाऊंगा, उधर ही खड़ा हो गया। बहुत देर के बाद पूजा बंद की, क्या हुआ, बोला भगवदगीता देना है। नहीं नहीं नहीं, हम भी ब्राह्मण है जन्म से, मैं नहीं लूंगा, मेरे पास बहुत है अभी, आप जाओ यहाँ से। मैं बोला नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। तो जबरदस्ती किया तो भगवदगीता ले लिया लास्ट, बोले 50 रुपये में दो। मैं बोला शर्म नहीं आता, बियर बार खोल के बैठे हो और 50 रुपये में लेने के लिए बोल रहे हो, बोलता आपको देना चाहिए हमको। इसलिए कोई बोलते हैं भगवदगीता डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे कि फ्री में क्यों नहीं बांटते, आप 50 रुपये में दे दो, तो उनको बोलना चाहिए आप हमको दान देना चाहिए, आप प्रिंट कैसे करेंगे हम। कोई बोला आपको फ्री में देना चाहिए, बोला फ्री में देने, पैसा कहाँ ले रहे, ज्ञान तो फ्री में मगर प्रिंटिंग कॉस्ट लगता है ना उसका, वो प्रिंटिंग का तो पैसा दे दो। तो पहले ज्ञान का पैसा नहीं लेते थे, अभी जैसे हम सेमिनार करते हैं तो कुछ फीस लेते, 50 रुपया 20 रुपया, पहले कुछ नहीं, ऐसे ही जंगल में बैठ के प्रवचन होता था, क्योंकि पहले बुक भी नहीं था, सिर्फ पहले बोलते थे सुन के याद रखते थे। अभी प्रिंटिंग कॉस्ट तो देना पड़ेगा ना आपको प्राइस, क्योंकि आपको बुक बना के फैसिलिटी है कि घर में रख के रोज पढ़ सकते हैं, इसलिए उसका प्राइस लेना चाहिए। तो इसलिए सिर्फ दिखाने के लिए दिखाते अपने ना ब्राह्मण थ्रेड को कि मैं ब्राह्मण हूँ, आप इवन ब्राह्मण दीक्षा होने के बाद भी और आपके अंदर ब्राह्मण का गुण नहीं है तो आप ब्राह्मण नहीं है। इसमें प्रॉपर तात्पर्य में एक अच्छा चीज बताते हैं कि जो व्यक्ति, हाँ 6 नंबर श्लोक में बताते हैं कि अगर कोई व्यक्ति द्विज यानी उनका ट्वाइस बन, हाँ, बट बाय द गाइडेंस ऑफ ए ब्राह्मण एंड बाय संस्कार वन कैन बिकम द्विज ट्वाइस बॉर्न, वो द्विज हो सकते हैं संस्कार में, संस्कार के द्वारा, एंड देन ग्रेजुअली बिकम ए ब्राह्मण, वो धीरे धीरे ब्राह्मण बनता है, सिर्फ दीक्षा लेने पर या दोबारा जन्म होने पर ब्राह्मण नहीं है, इसमें वो तो ग्रेजुअली बिकम ब्राह्मण। जब वो धीरे धीरे अपने गुणों को डेवलप करेगा, वो वैष्णव गुणों को और ब्राह्मण का गुणों को, तब भी ब्राह्मण बनता है। सिर्फ दीक्षा लेने पर मैं अभी दीक्षा मिल गया मैं ब्राह्मण हूँ नहीं बोल सकते आप, क्योंकि प्रॉपर बोलते हैं ग्रेजुअली डेवलप करते हो गुणों को, तो इसलिए गुण के ऊपर ब्राह्मण है कि नहीं आधारित है। हाँ, जैसे रामानुजाचार्य है, उनके जो गुरु थे वो भी ब्राह्मण परिवार से नहीं थे, मगर वो उनको गुरु स्वीकार किए क्योंकि वो वैष्णव थे। तो इसलिए हम गुणों और कर्मों पर हम आधारित है, ब्राह्मण है कि नहीं। हरे कृष्ण। कोई गलती है तो माफ कीजिए, मेरा ये पहला क्लास है, हिंदी भी बराबर नहीं आता है। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न है तो किस टॉपिक के बाद का जो डिस्कशन है, श्रीमद् भागवतम की जय, प्रभुपाद की जय।